प्लेटफॉर्म पर हल्की भीड़, सामान खींचते लोग और गाड़ी के लेट होने की वजह से बनी बेचैनी। इंदर तेज तेज चलते हुए पांचवें प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा था। रिया ने उसे बताया था कि सानवी और कृति वहीं हैं और गाड़ी किसी तकनीकी कारण से अभी तक रवाना नहीं हुई। इंदर के कदम उतने तेज नहीं थे जितनी उसके अंदर की घबराहट थी। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसने देखा सानवी ट्रेन के दरवाजे के पास शांसी खड़ी है और कृति उसके पास खड़ी उसे मनाने की कोशिश कर रही है। इंदर ने एक गहरी सांस लेकर उनके पास पहुंचा। सानवी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, इंदर ने कहा। सानवी ने सिर नहीं उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर था, जैसे उसने खुद से एक निर्णय कर लिया हो। कृति तुरंत बोल पड़ी, दीप प्लीज, हमें नहीं जाना चाहिए, चलो वापस चलते हैं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे जाने की। सानवी ने कृति की कलाई को हल्के से पकड़ा और बहुत शांति से बोली, कृति, जो मैं सोच रही हूं वही ठीक है, चलो। कृति ने असहाय नजर से इंदर को देखा, जैसे कह रही हो तुम समझाओ, शायद वो आपकी सुन ले। इंदर थोड़ा और करीब आया। सानवी, तुम वजह जानती हो और मैं भी जानता हूं, पर यूं जाना हल नहीं है, वापस चलो। कभी कभी किसान भी अपने घर लौट जाता है जब मौसम कहता है कि अभी जाने का वक्त नहीं। तुम भी लौट आओ, कहीं मत जाओ अभी, बस वापस चलो। सानवी की पलकें एक पल कांपी, पर उसने कुछ कहा नहीं। कृति ने फिर उसका हाथ पकड़ा, दी रुक जाओ ना प्लीज। सानवी ने एक लंबा सांस लिया और बहुत हल्की आवाज में बोली, कृति चलो। उसी समय लाउडस्पीकर पर आवाज आई, यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाने वाली गाड़ी कुछ ही क्षण में चलने वाली है। इंदर ने एक कदम आगे बढ़कर फिर कहा, सानवी एक बार पीछे देख लो, बस इतना ही कह रहा हूं, मत जाओ, वापस चलो। सानवी ने नजर नहीं उठाई, जैसे कोई अंदर से टूट रहा हो लेकिन चेहरा उससे कुछ कहने से इनकार कर रहा हो। ट्रेन हल्के झटके के साथ चल पड़ी। कृति जल्दी से चढ़ गई और जाते जाते एक बार पीछे मुड़ी। इंदर को देखकर उसकी आंखें भर आईं। सानवी चढ़ चुकी थी। ट्रेन तेज होती गई। इंदर कुछ कदम आगे दौड़ा, पर दरवाजा उसकी पहुंच से दूर होता चला गया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। आखिरकार गाड़ी प्लेटफॉर्म से दूर हो गई और इंदर वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल वहीं जहां वो एक उम्मीद लेकर आया था। विक्रांत उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने पुलिस को फोन किया था। काफी तलाश के बाद वो उस टेलीफोन बूथ तक पहुंच चुका था जहां से कॉल की गई थी और पुलिस को खबर दी गई थी। बूथ खाली था, पर वहां तक पहुंचना ही बहुत था, क्योंकि अब विक्रांत को अंदाजा हो चुका था कि जिसने भी फोन किया वो ज्यादा दूर नहीं होगा। शायद आने वाले दिनों में जेसिका बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि अगर विक्रांत उस टेलीफोन बूथ तक पहुंच गया है तो जेसिका तक भी जल्दी पहुंच जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि उसी की पत्नी ने पुलिस को खबर दी थी और उसे फंसाने की कोशिश की थी। सानवी जा रही थी, लेकिन ये सुनकर आर्यन का दिमाग भी खराब हो चुका था। वो उससे नफरत करने लगा था, उसका रेस्टोरेंट बंद करवा रहा था, लेकिन ये बात कि वो हमेशा के लिए चली जाएगी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आर्यन ने तुरंत देव को फोन किया, देव कैमल को फोन करो, जो डॉक्यूमेंट पर हमारे दोनों के साइन रहने थे वो करवाने हैं, और कैमल से कहो रेस्टोरेंट वापस खोलने का इरादा है। देव ने तुरंत कैमल को कॉल किया। कैमल ने सानवी को फोन मिलाया। सानवी, अभी हमारे डॉक्यूमेंट का काम खत्म नहीं हुआ है, सानवी थकी आवाज में बोली। अब मिलने को क्या रह गया, रेस्टोरेंट तो बंद हो गया था। नहीं, रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ, देव वापस आया था, उसने कहा है कि कुछ साइन रह गए थे हम दोनों के, और फिर उसने कहा है कि वो लोग रेस्टोरेंट फिर चलाने में इंटरेस्टेड हैं हम दोनों के साथ। सानवी पल भर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, क्या कह रही हो तुम, अब मैं आर्यन के साथ काम नहीं कर सकती, इतना सब हो चुका है, सही नहीं होगा, मैं वापस नहीं आना चाहती, कैमल ने सख्ती से कहा। मैंने कहा ना वापस आ जाओ, बाद में चली जाना, अभी आओ, सानवी की आवाज धीमी हो गई। देखो तुम किसी और हिस्सेदारी को ढूंढ लो, मैं वापस नहीं आऊंगी, मेरा और आर्यन का साथ काम करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कैमल ने एक लंबी सांस ली। हम लोग मिलकर बात करते हैं, फैसला वही होगा, सानवी आखिर मान गई। ठीक है, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, कृति ने यह सुनते ही खुशी से सानवी का हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल दीदी, हमें वापस जाना चाहिए, अगर हम वापस जाएंगे तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी, अगर हम अपने शहर लौट गए तो शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा, प्लीज दीदी चलिए ना। सानवी ने धीरे से सिर हिला दिया और कृति का चेहरा खिल उठा। आर्यन कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा खत्म करके अपने ऑफिस लौट आया था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, वो आए जाए अब उसे फर्क नहीं पड़ता, सानवी का जाना उसका फैसला। आर्यन खुद को यही समझाता रहा कि सब ठीक है। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, लैपटॉप खोला और गहरी सांस लेते हुए कुर्सी पर किक गया। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं, वो अपने मन में दोहराता रहा, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो। तभी दरवाजा बिना खटखटाए खुला और हमेशा की तरह शिव मेहता अंदर आता दिखा। जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है, उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारत और क्यूरियोसिटी थी। आर्यन ने सिर उठाए बिना कहा, क्या? शिव उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। देव ने बताया रेस्टोरेंट फिर से खोल रहे हो,
आर्यन ने हल्का सा भौंसी कोड़कर कहा, सोच रहा हूँ, हाँ, और फिर से स्क्रीन में घुस गया जैसे बात खत्म। शिव हंस पड़ा, यार ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला होगा। आर्यन ने लैपटॉप थोड़ा बंद किया और शिव की तरफ देखा। उसकी आंखों में ठंडा सा गुस्सा और थोड़ा दर्द भी था, जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। देखो तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता है, पर सुनो, मैं रेस्टोरेंट कैमल के लिए खोल रहा हूँ, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। सानवी ने जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, और ना उसकी जिंदगी में लौटने का कोई सवाल उठता है। शिव मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें दोस्ती भी थी और आर्यन की हालत को समझने वाला तंज भी। बिल्कुल बिल्कुल माफ मत करना उसे, कभी भी नहीं, शिव ने कहा और हंसते हुए पीछे कुर्सी पर टिक गया। लेकिन एक बात कहूं, तुम कितनी भी नफरत बोल लो, जिस दिन वो वापस लौटेगी सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा बदलेगा। आर्यन ने एक सेकंड उसे घूरा, फिर अपने गुस्से में सिर घुमाकर बोला, वो वापस आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात नोट कर लो। लेकिन आर्यन की आवाज कहीं ना कहीं उस बात को झुठलाने की कोशिश कर रही थी जिसे उसका दिल चुपके से मान चुका था। रिया बेहद परेशान और उलझन भरी हालत में सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता और दिल में हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी। उन दोनों के जाने का विचार ही उसके मन को असहज कर रहा था। सोच रही थी कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से बल पड़ा। आश्चर्यचकित रिया उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। उसकी आंखों के सामने खड़ी थी सानवी और कृति। रिया के होंठों पर पहले तो एक झिझक थी, फिर जैसे ही उसने उन्हें देखा उसका चेहरा खुशी और राहत से भर गया। ये सपना तो नहीं है, है ना, रिया ने धीरे से कहा और बिना रोक टोक के उन्हें गले लगा लिया। सानवी और कृति ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। मौन ही सही, लेकिन उन तीनों के दिलों में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई थी। थोड़ी देर तक बस इसी एहसास में तीनों खड़ी रहीं, जैसे सारी परेशानियां सारी उलझने एक पल में ही दूर हो गई हों। फिर रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो तुम्हें इंदर ने रोका होता, मैंने उसको बताया था। सानवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं रिया ऐसा नहीं है, रेस्टोरेंट फिर से खुल रहा है इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। कृति भी बीच में आई और उनकी बात में शामिल हुई, हाँ दीदी अब सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ हैं और अब चिंता की कोई बात नहीं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो।
खुशी और राहत की ये भावना उनके चेहरे और आंखों में साफ झलक रही थी। कुछ देर तक वे बस एक दूसरे को देखते रहे बिना किसी शब्द के, लेकिन हर मुस्कान हर हल्की हंसी ने उनकी दोस्ती और प्यार की गहराई को जाहिर कर दिया। और उस दिन सोफे पर बैठे तीनों का ये मिलन उनके दिलों में हमेशा के लिए एक मीठा और यादगार पल बन गया। प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना याद रखें।